को तो लेकर के ठाकुर जी को धारण करा दिया और चावल को लेकर के और जो चीजें थी रसोई बना ला। इमली के पत्ते तोड़ लाए, उसमें हल्का नमक और हल्का मिठाई दे करके सुंदर एक टॉप जैसा अम्ल टॉप। वन में कुछ सब्जियां ऐसे ही यहाँ पर बगीचे में साधारण सी चीजें बनी, किंतु इतनी सुंदर हुई भोग लगने के बाद अत्यंत स्वादिष्ट अत्यंत सुंदर। और उसने जा रहे थे इतने में वहां वह तुम दोनों मिलकर के तो बड़े सुंदर से भगवान का भोग लगा करके अच्छे से पा रहे थे और हमको स्पर्श भी नहीं किया। हम उनको भी दिया, इनको भी दिया, दोनों प्रभुओं को दिया। हो सकता है कि और भक्त लोग भी आ गए, सबको दिया, किंतु वो कम नहीं पड़ा किसी को। ये वहां पर घटना हुई। यहाँ पर की एक घटना और है। सनातन गोस्वामी जी उधर शहर से नहीं आते थे, स्वर्गदार के फिकर वाली सनत से, क्योंकि उसमें भक्त लोग आएंगे जाएंगे स्नान करेंगे अपवित्र हो जाएंगे। मैं बहुत ही पतिता थी, समुद्र के रास्ते से आते। गदाधर पंडित ने आज उनको भी निमंत्रण किया और वो भी आ जाए। वो आए हैं दोपहर में तपती हुई धूप में, बालू में जेठ के समय में, और पैर में उनके लग रहे हैं, किंतु मालूम नहीं होता। महाप्रभु जी के प्रति इतना प्रेम है कि मालूम नहीं है, पैर में छाले बड़े बड़े पड़ गए। और वहां पर वो सनातन आज कौन रास्ते से आया? मैं समुद्र के रास्ते से। हमारे पैर की दुर्दशा तो देखो, अब उनको देखा जैसे पैर में बड़े बड़े छाले पड़े गए। जिस समय में दुख में भी सुख की अनुभूति होती हो भगवान की सेवा, ये सेवा सर्वोत्तम है, उनको मालूम ही नहीं पड़ा। जब महाप्रभु जी जब वृंदावन जाएंगे तो उन्होंने कहा जैसे हमारे साथ में कोई नहीं चला, तो भी कोई माना नहीं, बहुत से लोग हो गए, ये भी जाने के लिए तैयार हुए गदाधर पंडित। उस समय में इन्होंने इनको मना किया, तुमको गोपीनाथ जी का विग्रह दिया है,
छत्र संन्यास लिया
है, और तुमने छत्र संन्यास लिया है। छत्र संन्यास माने संन्यास इस तरह से नहीं, मैं इस स्थान को छोड़ करके और कहीं नहीं जाऊँ। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी यहाँ से जाने के बाद में राधा कुंड को छोड़ करके कहीं नहीं गए, ये सब क्षेत्र संन्यास। तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है, तुमको साथ नहीं ले जाऊंगा, तुम यहीं रहो। उन्होंने कहा जी उस क्षेत्र संन्यास चूल्हे में जाए, हमें कोई जरूरत नहीं, हम तो आपके बिना रह नहीं सकते। ये भी साथ साथ चल पड़े। चलते 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 जब कौन सी नदी आई,
आहर नाला के पास
नहीं, पार करके बहुत दूर
चंद्रभागा
नदी आई, तो उन्होंने शपथ दिया, मेरा शपथ है
सील का शपथ,
कोई भी विचार मत करके तुम यहीं पर रहो। बस सुनते ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। उनको उसी मूर्छा अवस्था में छोड़ करके चले गए। फिर जब इनको होश आया तो किसी प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि सब लोगों ने मिलकर के सांत्वना दे करके किसी प्रकार से शरीर को केवल ले आया, प्राण तो उनके साथ में घूम रहा। जब तक मैं महाप्रभु नहीं हुआ, इतना गदाधर पंडित का महाप्रभु जी के प्रति भाव जो और किसी का नहीं। इसलिए स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु जी के 3.5 जनों में एक हैं, किंतु उन्होंने भी गदाधर को राधा जी के रूप में उनकी वंदना स्तुति की। वो स्थान यहीं पर भागवत पाठ करते थे गदाधर पंडित, बहुत सुललित मधुर स्वर था और व्याख्या भी अपूर्व करते थे। महाप्रभु स्वयं सुनने के लिए वहां से गंभीरा से आ जाते। देखो वहां पर स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी काशीश्वर मिश्र इत्यादि लाखों आदमी, किंतु उस स्थान को छोड़ करके यहाँ पर किस लिए आते? गदाधर प्रभु जी के मुख से भागवत सुने, अपनी लीला ही सुनेंगे। क्या सुनते होंगे? दशम स्कंद। दशम स्कंद में भी क्या सुनते होंगे? बस जयति तेधिकम जन्मना प्रज श्रयते इंदिरा स्वसदत्रहि दैत देशतां दीक्षुस्तावकां वैधिता सव त्वांग विचिन्न। एक श्लोक में सारा दिन निकल जाता था और दोनों रोते 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 देहांत होकर के गिर जाते। एक दिन ऐसे ही होते होते और गोपीनाथ जी के गृह में महाप्रभु जी ने प्रवेश किया, फिर निकले नहीं। गोपीनाथ जी ने उन्होंने गदाधर पंडित जी ने क्या कहा? गोपीनाथ घरे हराई
हो कथा जब बक्को नहीं स्फुरे महाप्रभु हराई नु दुराचंद्र गुराचंद्र ने हराई नु गोपीनाथ घरे। गोपीनाथ
बस उनके घर में प्रवेश कर गए थे। कोई कोई जगन्नाथ जी का कहते हैं, किंतु हम लोग इसी के ऊपर इसी को लेते हैं। वैष्णव मात के भी महाप्रभु के भक्त लोग जगन्नाथ जी में क्यों मिलेंगे? मिलेंगे तब पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि द्वारकाधीश होना जाना पड़ेगा, इसलिए उस विग्रह में नहीं जा सकते हैं सिद्धांत के वजह से। और समझ रही, कृष्ण जो है स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है, राधा नाथ है
गोपीनाथ जी
और जगन्नाथ जी क्या है? राधानाथ है और रुक्मिणी नाथ हो सकते हैं, विमला जी उनकी शक्ति है, यहीं तक बहन सुभद्रा जी हैं, इसलिए उनमें मिलने से ऐश्वर्य भाव में मिल जाएंगे। किंतु महाप्रभु जी तो है नहीं, स्वयं कृष्ण है, राधा भाव लेकर के आए हैं, इसलिए गोपीनाथ में। इसलिए सिद्धांत से यही बात ठीक मालूम पड़ती है, जो गोपीनाथ में वो प्रवेश कर गए वहां नहीं, उनको जब ही देखते थे तभी ये देखते थे कि ये सूर्य ग्रहण में वही जादव कृष्ण वहां पर आए हैं, द्वारकाधीश आए, इसलिए उनकी तृप्ति नहीं होती थी उनसे, इसलिए उनको पकड़ करके वृंदावन ले जाना चाहते। मेन बात होकर कल सुना दी, हो गया एक घंटा। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। पांडवों की भक्ति कैसी थी? शुद्ध थी कि नहीं? सब मिलकर के करते थे, इसलिए भक्त लोग ऐसे भी कर सकते हैं, गृह रह करके भी और छोड़ करके भी। सनक सनंदन सनातन, ये तो गृह त्यागी थे ना, नारद जी भी गृह त्यागी, और पांडव लोग क्या हैं? गृह है ना, किंतु दोनों में श्रेष्ठ कौन है?
पांडव लोग।
क्यों? सनक सनातन जी अपने बेटे नाती पुत्र पिता मोहक लेकर के कृष्ण की सेवा नहीं कर सके, और ये लोग क्या कर रहे? अपनी स्त्री बेटे माता भैया पुत्र पपुत्र सबको लेकर के,
प्रजाओं को भी,
प्रजा तक को भी कृष्ण का भजन करा रहे। ऐसा यदि कृष्ण ही हमारे घर में आ जाए तो क्या जरूरत है छोड़ने की? तो गोपियों ने क्यों छोड़ दिया? ये सब विचार है सब कर्मसर, इसलिए गोपियों के भाव आ जाएंगे, इसके बाद में विचार किया जाएगा धीरे धीरे। तारतम्य है, प्रतिकार तारतम्य है, सब एक समान नहीं है, सब गोपियों की प्रति एक समान नहीं थी कृष्ण में, कुछ का एक तरफ कुछ का एक तरफ नहीं। राधा जी जैसा किसी का प्रेम कृष्ण में नहीं।
तो दर्पण मार्जनम महादावास। इस श्लोक में परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन को कहा गया ये परमाराध्य है, जय हो इनकी, सब समय इनकी जय हो, विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। दूसरे श्लोक में कहा नाम नामकारी बहुधा निज सर, नाम और नामी दोनों अभिन्न है, किंतु ऐसे जान करके भी जो स्वरूप से भी अधिक दयालु है नाम,
हमारी रति उनमें प्रेम नहीं हुआ। प्रेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पिना गति सुनी चिन्ह तीन से भी दीन ही पेड़ जैसा सहिष्णु, दूसरों को सम्मान देना, अपने सम्मान नहीं लेना। क्रोध की तो बात और सब की तो बात छोड़ दो, कहाँ जाएगा उड़ करके। यदि क्रोध का लेश भी रहा तो कृष्ण भक्ति से चित होने की संभावना। यदि कोई आदमी क्रोध करता है तो इस संसारिक बातों को लेकर कहते ही करता है, कोई गड़बड़ हो गई, अरे तुम तो भक्त है, तुमको क्या जरूरत है, कोई कामना बात है, इसलिए विचारों में बतलाया। दीनहीन होकर के दूसरों को सम्मान दे करके और अपने मान नहीं चाह करके पेड़ जैसा सुन करके भजन करेगा तो नाम में प्रेम होगा। ऐसा आदमी नाम का प्रेम, नाम में प्रेम नहीं पाएगा। फिर उसके लिए क्या कहा? न धनम न जनम न सुंदरीं कवितांग वा जगदीश कामये। विद्या रूप स्त्री इत्यादि की हमको कोई भी जागृत चीज की जरूरत, मोक्ष की भी जरूरत, रामदेव आपने प्रीति दे। इसके बाद में बतलाया ऐ नंद तुम विपिन करम पतितंग मा विष्णु। हम संसार बस आप हे नामदेव ये समझिए मैं आपके चरणों को, आपके चरणों को छोड़ूंगा, आप हमको ऐसा ही चिंता कीजिए, आपके चरणों की धूलि है। यहाँ तक नाम, अब इसके बाद भी देखो प्रभु ऐसा कब हमारा सौभाग्य ऐसे नाम आपके लिए, ये कब होगा भाई? जब एकांतिक स्थिति उसमें आएगी तब होगा। यदि इधर उधर संसार की चीजें लगे में ऐसा प्रेम आएगा, ये नाम हमारा आराध्य। अब इसके बाद में कहा जुगाई तंग निमेषेन चक्षुषा प्राप्तिशायी तुम सुन्नाई जगत सर्वम गोविंद विरहे। अब यहाँ पर नाम छोड़ दिया, अब गोविंद विरहे क्यों? अब नाम नाम होकर के नाम, अब तक नाम था, अब नाम नहीं रहा, अब क्या हो गया? तम कृष्ण बन गया, गोविंद बन गए। राष्ट्र में जैसे छोड़ दिया ना, ऐसे ही आपने हमको छोड़ दिया है, ऐसी भावना दशा ऐसे। यहाँ पर नाम नहीं कहा, वो नाम ही यहाँ पर नाम ही हो गया। अब फिर देखो अंतिम में यहाँ पर नाम को कह रहे हैं ना कि देखो कृष्ण असली स्वापादरसं विनस्माम अदर्शनां परमतां करोत्वा यथा तथा मत्था सिद्धातुलं पतो प्राणात्तस्तैव नापर। आप हमारे और हमारे प्राण, यदि हमें आप आलिंगन करके हमारी सेवा करें तभी हम बोलते आप हमारे प्रिय। और यदि हमें छोड़कर के द्वारका मथुरा चले जाते हैं और हमें पीस देते हैं विरह में तो भी आप हमारे। देखो यहाँ पर भी हम नाम नहीं, अब क्या हो गया? यहाँ पर गोपीनाथ हो गए, वही पहले तो थे गोविंद मदन मोहन पहले में क्या है युग चेतो दर्पण मार देना। अब इसके बाद में हो गए जुगाई तंग में गोविंद और अंतिम श्लोक में कौन हो गए?
गोपीनाथ।
महाप्रभु जी उनको साथ में स्वरूप दामोदर राय रामानंद के साथ में ये श्लोक अफुरंत रूप में आस्वादन कर दे, इस श्लोक का अर्थ ही नहीं समाप्त होता, सारा भागवत इसी में लेकर के प्रवेश कराया। महाप्रभु इस चीज को देने के लिए आए थे, इसलिए इसी में ही हमारी एकांतिक रुचि हो, तब तो जीवन का ये सार्थक हुआ। नहीं तो महाप्रभु देने के लिए हमारे घर में आए, ऐसे वैष्णव लोग भी हमसे मिलते हैं और उसमें प्रीति ना हो करके दूसरी जगह हमारी प्रीति जाती है, तो हमारा जैसा दुर्भागा जगत में कोई नहीं मिलेगा, तो अभी लोभ रखेंगे उसी का, पिएंगे स्वाति नक्षत्र का ज्ञान, नीचे का नहीं चाहे भले ही मर जाएंगे। ऐसे ही भक्त की प्रक्रिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जगत जीवों के ऊपर में कृपा करके चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा की वंदना कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसी है, उसके लिए वे कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभुर कृपा निरंकुश महामाधुर्य का बिंबिनी। महाप्रभु जी की कृपा है निरंकुश, निरंकुश माने क्या, बिना किसी अंकुश के, बिना विघ्न बाधा, बिना निषेध और विधि, कोई विधि निषेध उन पर लागू नहीं। किसको कृपा कर देंगे, और उच्च से उच्च अपनी जो कुछ संपत्ति है उसको दे देंगे, कोई विधि निषेध उसमें नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। मान लें कि जब बनवारी लाल चाहें हम अपनी संपत्ति सबको दान कर दें, सब कुछ अंकुश है, बड़े भैया हैं, भतीजा है, घर के लोग हैं, लड़कियां हैं, समाज है, नहीं कर सकते। नारायण है, वो चाहे जो मैं कुछ दे दूं तो उन पर भी अंकुश है, उनमें भी पवित्रता और अपवित्रता इत्यादि का ज्ञान चाहिए, सबको सब कुछ नहीं दिया जाए। किंतु महाप्रभु जी की ऐसे कृपा है निरंकुश, और कोई अंकुश नहीं लगा, कब किसको कैसा प्रेम दे दें इस पर किसी का अंकुश नहीं। और कैसी है ये कृपा? महामाधुर्यमयी। इसका आगे वर्णन करेंगे। वो कैसी कृपा? जैसे दूर कोई मरुभूमि है, थार डेजर्ट है, मरुभूमि, उसमें एक सूखा हुआ वृक्ष है, नीरस। जैसे मैदानी तटों में वर्षा होती है, प्रचुर वर्षा, किंतु मरुभूमि तो होती नहीं। ये कृपा ऐसी है, माधुर्य कादंबिनी। कादंबिनी माना है ताज, मेघमाला, मेघों की पंक्ति लंबी, जो मैदानी भूमि में वर्षा करके बाढ़ ला देती है और मरुभूमि में रहने वाला वृक्ष नीरस सूख गया है, उसके लिए क्या करेगा? कहते हैं महाप्रभु की तो वर्षा की तो बात छोड़ दो, उनकी ये जो मेघमाला है उसकी छाया भी रहे, छाया, और उससे हवा उधर से आए तो उन सूखे हुए वृक्षों में भी प्राण का संचार कर देती है वो महाप्रभु जी की कृपा। ऐसी महाप्रभु जी की कृपा है हमारे अंदर में। मैं नीरस हूँ, बहुत दूर मरुस्थल में हूँ, महाप्रभु जी का समय से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का समय प्राय 250-300 वर्ष पीछे है। दूर हुआ ना, रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के लीला में थे, उसमें प्रकट थे, और ये 250 वर्ष पीछे, 300 वर्ष पीछे ये हुआ। मरुभूमि कलिकाल में भक्ति का प्रचार नहीं है, शुद्ध कर्म को, ज्ञान को ही भक्ति मान लेते हैं, शुद्ध भक्ति का इसमें नहीं। ये शुद्ध भक्ति का नहीं होना ये मरुभूमि है। साधु संतों का, रसिक विद्वान तत्वज्ञ वैष्णवों का मिलना बड़ा भारी दुर्लभ है। सब कुछ मिल जाएगा इस जगत में, भगवान भी मिल जाएंगे, कि तो उनके रसिक प्रेमी और तत्व को जानने वाले जो भक्त हैं, इनका मिलना बड़ा भारी दुर्लभ। तत्रापि मन्ने
दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन,
भगवान के जो प्रिय हैं इनका मिलना बड़ा भारी कठिन है। वो कहते हैं कि यदि वो कहीं हो और उनकी कृपा, उसकी हवा भी लगे, तो दूर से सूखा हुआ वृक्ष में भी प्राणों का संचार हो जाता है, तो हम लोग उनसे भी दूर हैं महाप्रभु जी से, किंतु उनकी कृपा जो बरसी, उसके छींटे अभी तक भी है इस जगत में। इसका क्या मतलब छींटा है? ऐसे भी महापुरुष लोग हैं जो महाप्रभु की कृपा का उल्लेख अपनी हरि कथाओं में करते हैं। उसकी विशेषता क्या बतलाया? हृदय बप्रे नव भक्ति, हृदय बप्र माने होता है हृदय, बुद्धि नहीं। कोई चाहे जे दिमाग से हम भक्ति को ग्रहण कर ले, ये नहीं होगा। दिमाग में ये भक्ति पैदा नहीं होती, उसकी उपलब्धि नहीं होती।
दिमाग में विचार है, हृदय में अनुभव है,
ये भक्ति का क्षेत्र है हृदय। तो जिस क्षेत्र में, मान लिया गर्मी के वजह से सब कुछ झुलस गया है, सब कुछ झुलस गया, घास सूख गई, पेड़ पौधे सूख गए, किंतु जड़ तो रहेगी। यदि जड़ ही न रहे, बीज ही न रहे, तो वर्षा होकर के क्या होगा? कुछ होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? नहीं होगा। किंतु महाप्रभु जी की कृपा ऐसी है, बीज और जड़ की भी जरूरत नहीं, उसमें भी नवजीवन संचार करके नए रूप में नव भक्ति को, नव भक्ति माने नवधा भक्ति अथवा नवीन भक्ति, उसके प्राणों का संचार कर देते हैं। जगाई मधाई कैसी भूमि थी?
न जड़ न
जंगल के शेर, बाघ, भालू, ये सब क्या थे? उनके तरफ मैं देखा और प्रेम का संचार कर दिया। वो बाघ भी हाथ जोड़ करके, दो पैरों पर खड़े होकर के हरे कृष्ण कर लिया। बाघ, भालू, हाथी, सब कृपा कर। जहां पर बीज कुछ रहता है वहां पर तो अंकुर हो जाएगा वर्षा से, या कुछ जड़ रहे ना तो भी उसमें से जड़ से फिर से नहीं घास उगाएगा, जैसे बरसात में होता है। किंतु जहाँ पर कोई अंकुर ही नहीं है, कोई जड़ ही नहीं है, वहाँ क्या होगा? वहाँ कुछ नहीं होगा। किंतु महाप्रभु की ऐसी कृपा है, जिस हृदय में सब कुछ जल चुका है भक्ति, भक्ति की वृद्धि नहीं है, वहाँ पर भी उनके संग से नवीन रूप में भक्ति का संचार कर देते हैं, ऐसी ये महाप्रभु की। और एक क्या दिया विशेषण, ताप तपर्तु दाह दमनी। संसार में कामनाएं वासनाएं हैं, संसार में दुखी क्यों लोग हैं?
कामना वासना के कारण।
यदि कामना वासना नहीं रहती तो सभी लोग सुखी रहते, हम समझ नहीं पाते हैं। किंतु सबकी जड़ ये कामना है। एक आदमी क्रोधी हो, एक आदमी कामी है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, अपराध करता है, लोगों से शत्रुता करता है, इसका कारण क्या है? कोई न कोई भीतर से कामना वासना है। कामना स्पष्ट रूप से नहीं है किंतु वासना उसमें है। ये वासना ही समस्त अनर्थों की जड़ होती है। इसीलिए त्रिताप, तीन प्रकार के ताप, अद्भौतिक, अध्यात्मिक और अधिदैविक, तीन प्रकार के ताप हैं। किसी को सांप ने काट दिया, किसी को सांप तक तो नहीं काटा, शरीर से रोग हो गया, किसी को एक आदमी ने मारा, और किसी को कुछ मारा नहीं, उसका कोई आसपास का व्यक्ति मर गया अपना संबंधी, उसको ताप होगा कि नहीं? तीन तरह के ये सब ताप है। किसी न किसी रूप में संसार के प्राणियों को ये लगे रहते हैं, कोई से मुक्त नहीं। तो ये तीन प्रकार के ताप लगे रहते हैं। महाप्रभु जी की कृपा कैसी है? एक कृपा के कारण से इन वासनाओं को सदा के लिए मिटाकर वहां पर भक्ति का रस का संचार कर देते हैं, ऐसी ये कृपा है महाप्रभु जी। बड़े बड़े दस्यु जंगलों में, बड़े बड़े राजाओं के लड़के, बड़े बड़े मायावादी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, कर्मी लोग, सब लोगों को जो ताप चल रहा है, सबको अपनी कृपा से क्षण मात्र में दूर कर दिया है। वसुदेव भी प्रथा दक्षिण में, महाप्रभु जी दक्षिण में जा रहे थे, उसको कुष्ठ रोग हो गया, ये सब गल गए, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए। महाप्रभु वहां पर पहुंचे बारह क्षेत्र में, कुर्म क्षेत्र में लाखों लोग उनके दर्शनों के लिए आए, और वो बेचारा अपने कर्म का दोष देता हुआ सबसे पीछे बैठा है। मैं घृणा योग्य व्यक्ति, मैं उनके निकट नहीं जा सकता, और मेरा सौभाग्य होता जब मैं दूर से भी उनको दर्शन कर लेता, किंतु उस भीड़ में महाप्रभु खो गए। वो हाहाकार करता रहा, महाप्रभु चले गए। एक दो माइल गए होंगे, इसकी अंतर की पुकार उनको सुनाई पड़ी, और वहीं से एक मिनट के अंदर में इसके पास में चले आए और उसको उठा करके गोदी से लगा लिया। एक मिनट के अंदर में उसका ये कुष्ठ रोग और सब दूर हो गया, परम सुंदर देवता जैसा उनका रूप हो गया। बतलाओ तो उसका जितना जीवन का ताप था एक सेकंड में हरण कर लिया, ऐसी उनकी कृपा। कृष्ण भी बड़े दयालु, किंतु कृष्ण से भी परम दयालु ये चैतन्य महाप्रभु। और क्या, महाप्रभु की कृपा ऐसी है, यदि बरसती है तो जैसे पानी बरसता है मेघ से, मेघ से पानी बरसा और नदियां एकदम और नद सरोवर पानी से भर जाते हैं और बाढ़ आती है, दोनों किनारों को डुबाती हुई निरंकश रूप में वो बाढ़ क्या करती है, समुद्र की तरफ में मिलने जाती है, दोनों किनारे के सबको, जो कोई पेड़ पौधे नदी जितना जो कुछ है सबको बहाते हुए और बाढ़ से एकदम डुबाते हुए दोनों किनारों को बड़े वेग से क्षिप्र गति से चलती है समुद्र की तरफ। महाप्रभु की कृपा जहां पर बरसती है क्या होता है, विश्व के जितने भी भक्त लोग हैं उनकी कृपा को बारी को पा करके पानी को बाढ़ से जैसे बह जाते हैं वैसे तीव्र गति से किधर चलते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु की तरफ में। ये भक्ति रसामृत सिंधु हैं कौन,
अखिल रसामृत
सिंधु कृष्ण है। ये नदियां चलती हैं समुद्र में और ये नदियां हैं प्रत्येक हृदय में जो भक्ति की सरस धारा है वो क्या है,
एक एक स्थायी भाव
वो समस्त समुद्र की तरफ में है। समुद्र है माने कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु, महाप्रभु के समय में देखा गया। सब लोग बड़ी विग्र से चल रहे हैं राधा कृष्ण के प्रेम की तरफ में, उसमें भी सबसे अधिक गए किधर, कौन भाव में, मधुर भाव में सब लोग बहते हैं। जिसको नहीं देना चाहिए अयोग्य अधिकारी हैं, अधिकारी नहीं उनको भी उधर में बहा दिया और सब जितने रस थे वो सब गौण हो गए। ये महाप्रभु जी की कृपा है। वो दूर से भी यदि नहीं बरसती है तो भी यदि छाया भी होगी ना आकाश में, छाया से सरसता आ जाएगी। ऐसी कृपा की वंदना करते हुए कह रहे हैं, पहले भीष्म पितामह जी थे, हमारे भागवत में द्वादश महाजनों की बात लिखी गई। आसुन महाराज द्वादश महाजनों की बात लिखी ऊपर वर्ष जिसमें शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद, व्यास, सुखदेव गोस्वामी, भीष्म पितामह, जम महाराज, नारद जी, प्रह्लाद इत्यादि ये 12 जन महाजन हैं।
चतुष्सन, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो मुनि, कपिल,
ये सब 12 महाजन
का भीष्म बोल भैया सकी हुए
जिस पथ से गए हैं हमको उसी पथ से चलना चाहिए। इसमें ब्रह्मा जी की भक्ति क्या, हाँ जो करके उनको प्रार्थना करें, जे प्रभु आप कृपा करके हमको अपना दास बना लीजिए। कपिल जी का वैसे ही अपनी माता जी को उपदेश दिया, संसार असार है, इस सब को छोड़ करके भगवान में अपने चित्त को लगाओ, यही भक्ति। उन्होंने बतलाया भगवान के प्रति निर्गुणा भक्ति होनी चाहिए, उपाधि की भक्ति नहीं होनी चाहिए। निर्गुणा माने क्या, संसार की कोई कामना वासना भी उसको स्पर्श न कर सके, किसी भी कामना वासना के लिए, यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भी, यहाँ तक कि नारायण की जो भक्ति है ये भी नहीं चाहिए। ये द्वारका की जो भक्ति है रुक्मिणी सत्यमावा की वो भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। ब्रज में जो दास्य भक्ति है, ब्रज में जो सख्य भाव है, ब्रज में जो वात्सल्य भाव है यशोदा जी का, ये भी मुझको नहीं चाहिए। एकमात्र क्या अभिलाषा उसमें, राधा जी की दासी हम बन जाए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, पाल्य दासी हम बन जाए, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी देने पर हम नहीं लेंगे, रूप गोस्वामी का ये विचार। वैसे उन्होंने 5 प्रकार के दिखलाए किंतु सबसे उनका मूल उद्देश्य है उसी को रूपानु कहा जाता है, जो रूप गोस्वामी के भावों को ग्रहण करें, जो उनका अपना खास भाव है कृष्ण के प्रति, साधारण चीज नहीं है। महाप्रभु जी ने जो सामने आए उनको ये प्रेम दिया, कोई भी विचार नहीं रखा। आज उन्हीं की कृपा से हम लोग भी कहाँ थर्ड क्लास विषयों में फंसे हुए हैं, और तब भी हम वही चीज चाहते हैं, जब मर जाएंगे तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएंगे और दूसरा कुछ नहीं लेंगे। ये किसकी कृपा?
महाप्रभु जी,
उन्हीं की कृपा से आप लोग भी कुछ सुन रहे हैं उस चीजों को। कैसे ये होगी भक्ति? इसके लिए भक्ति रसामी सिंधु में हमारे रूप गोस्वामी ने
बदला है।
तो ये लोग भक्ति कैसे करते थे? ऐश्वर्यमयी, भगवान को, कृष्ण को भगवान जानकर उनके प्रति भक्ति करते थे। और जितने ही उनमें ऐश्वर्य भाव है, अलौकिक भाव है, उसको ही ईश्वर की अंतिम सीढ़ी मानते थे।
भगवत का चरम सीमा
ऐश्वर्य, जैसे नारायण का जन्म नहीं, नारायण का कोई माता पिता नहीं, समस्तों के आदि हैं, इसलिए नारायण को कौन माना? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य भी और जितने भी हो गए। इसलिए इन लोगों ने भक्ति को माना, किंतु भगवान को, कृष्ण को भगवान मान करके उनके प्रति भक्ति के लिए चेष्टा की, जितने ये द्वादश महाजन हैं। किंतु भक्ति रस है, इसमें आनंद है, इस चीज का अनुसंधान नहीं कर सके। वही भक्ति जैसे प्रहलाद महाराज जी का, देखो, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दशाष्टकं निवेदनं, ये नौ प्रकार की भक्ति साधन बतलाया, आगे कुछ नहीं बतलाया। ये बतलाया ये कैसे होती है, साधुओं के संग से पहले होगी भगवान के प्रति चरणों में श्रद्धा। श्रद्धा यदि नहीं होगी तो शुद्ध रूप में साधुओं का संग भी नहीं होगा, उसमें रुचि नहीं होगी, हरि कथा में रुचि नहीं है। यदि श्रद्धा हुई, क्या श्रद्धा? शास्त्र जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि चारों वर्णाश्रमी अपने अपने धर्मों को अच्छी तरह से पालन करके भी यदि भगवान के चरणों की सेवा नहीं करते तो उनको नरक जाना पड़ेगा। चारों वर्णाश्रमी माने, ये वर्णाश्रम का धर्म क्या है? लोगों का उपकार करना, स्त्री का पति के प्रति, पति का स्त्री के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, समाज के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, ब्राह्मण का अपना कर्तव्य, ये सब सत्यवादिता, उपकारिता, ये सब जितनी चीजें हैं, दान इत्यादि सब परिग्रह, ये सब वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत है। इन सब को कोई अच्छी तरह से भी करे, जैसे शिव महाराज ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर को काट काट करके वजन करके दे दिया। दधीची महाराज ने देवताओं के लिए अपने शरीर को गायों से चटवा करके ये हार दे दिया,
जिंदा अवस्था में।
ये भी यदि भगवान का भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। इसको सुन करके साधु के वचनों में, शास्त्रों के वचन में कुछ श्रद्धा हुई। ये श्रद्धा होने के बाद में कुछ हरि कथा सुन सकता है साधु के सामने, धीरे धीरे ये श्रद्धा पुष्ट होगी। एक श्रद्धा ये है, और दूसरी एक होती है श्रद्धा लोभमयी। लोभमयी क्या है? भागवत की कथाओं को सुना, हमारे गोस्वामियों ने जो पुस्तकों को लिखा उसको पढ़ा, अथवा उनको साधुओं के मुख से सुना, और सुन करके इच्छा हुई कि मेरी भी भक्ति ऐसे ही होती जैसे गोपियों की। गोपियों की महानता का उल्लेख यदि कोई साधु पुरुष यदि उनकी महिमा का गान करे, उनकी कथाओं का, जो कृष्ण उस प्रेम से वशीभूत हो गए, सुन करके लोभ पैदा होता है जो हमारी भी कृष्ण के चरणों में ऐसी ही प्रीति हो, तो इसको कहते हैं लोभ से आदमी इतना आगे बढ़ जाता है, जो साधारण रूप में जो श्रद्धा हुई थी पहले शास्त्रों के सुनने से, उससे कोटि गुनी ये श्रेष्ठ है। किंतु ये होना बड़ा भारी कठिन है। इसी को जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जो कैसे लोभ होता है उसी को प्रसंग कर समय हम एक श्लोक आप लोगों को सुनाते हैं। कथा हो रही है, वैसे परीक्षित महाराज जी के सभा में ही हरि कथा हो रही है। वक्ता कौन है?
सुखदेव गोस्वामी।
सुखदेव गोस्वामी वक्ता कैसे हैं? भागवत जब हुई तो प्रणामी पड़ी होगी कि नहीं? कुछ लोटे थाल कपड़े उधर में उनकी दृष्टि थी, मुक्ति में भी दृष्टि नहीं थी। ऐसा कोई वक्ता हो जिसको तनिक भी किसी चीज की कामना, सांसारिक पारमार्थिक किसी चीज की नहीं, केवल कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का लोभ हो, तब तो वो व्यक्ति ऐसे ही कथा कहेगा और व्यक्ति भी वैसा ही होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी उनको कोई बुलाने नहीं गया, अपने आप आए ना, और सब लोग उठ करके खड़े हो गए, उनको वहां पर बैठा दिया। नारद जी भी बैठे थे, सुखदेव गोस्वामी के पिताजी भी बैठे थे उस सभा में, और पराशर जी भी बैठे थे, सभी लोग बैठे थे। किंतु इस बालक को 16 वर्ष या 12 वर्ष का बालक उसको लेकर के बैठा। वक्ता यदि हो ऐसा, श्रोता कैसा हो? परीक्षित महाराज सब संसार की कामना वासना छोड़ करके राज्य सिंहासन और मुकुट सब फेंक दिया, एक धोती पहन करके गंगा के किनारे बस बैठे। भगवान इनकी इससे ऐसी इच्छा दे करके और सुखदेव गोस्वामी को भेजा। उस समय में भागवत की कथा होते होते उद्धव जी ब्रज में गए हैं, और गोपियों का अत्यंत असमोर्ध असीम प्रेम देखा कृष्ण के प्रति। कहां ये स्त्रियां और कहां ये कृष्ण, और उनके प्रति इतना रूढ़ भाव देख करके आश्चर्य हो गए। देखा किंतु विचार करके देखा तसस्थ भाव से, लोग नहीं हुआ जो हमको भी ऐसी भक्ति हो, क्या हुआ तटस्थ भाव से विचार किया, जी ये लक्षण तो किसी में भी नहीं पाए जाते, इन गोपियों में ही केवल पाए जाते हैं, हमारे लिए असंभव है। लक्ष्मी जी को जो प्रेम नहीं हुआ, सुखदेव गोस्वामी का जो हमको नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, हर इन गोपियों में देखते हैं ऐसा प्रेम। बस तटस्थ भाव से विचार किया, बुद्धि के द्वारा वृत्ति के द्वारा, यहां से नहीं तो वहां के कुछ हो जाते, वहां के हुए फिर लौट करके चले गए मथुरा। यदि वैसा हो जाता तो ब्रज ही में रहते, वैसा हुआ नहीं, तो वहां पर गए और देखा गोपियों का। जो भ्रमर की बात कर रही थी, भ्रमर को देखा और देखा जी ये काला है तो समझ गई ये कृष्ण का दूत है, और उसी से बात कर रहे हैं। उसको ये मालूम नहीं जैसे ये कहां जानवर है, उसको दूत समझा और प्रेम के इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच करके उससे बात विवाद कर रही। कहते कृष्ण जैसे व्यक्ति से हमारे कोई भी संबंध नहीं है, उसे अब हमारी संधि सुलह नामा नहीं हो सकती, एक ही जन्म में नहीं, इस काले से भी हमारा कोई प्रयोजन नहीं। काला नहीं कहती, काला किसने नहीं, काला से संबंध हो जाएगा, इसलिए असित शब्द का प्रयोग किया है।
अल्लाह असित सखई,
असित सखई, असित माने क्या होता है,
जो सचेत नहीं है,
जो सफेद नहीं है, इतना ही तक। कृष्ण कह देती, काला कह देती, श्याम कह देती तो कृष्ण से संबंध हो जाता है, उस नाम से भी इनको अब चिढ़ हो गई है, ऐसा भावना दिखला रही है। ऊपर से देखने से मालूम पड़ता है जी ये कृष्ण की निंदा कर रही है, किंतु उद्धव क्या देख रहे हैं, इतना असीम कृष्ण के प्रति प्यार और प्रीति जो आज तक हमने जगत में कहीं नहीं देखा सुना। इसलिए अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के इन गोपियों की महिमा वर्णन कर रहे हैं। क्या महिमा कर रहे? यदि इस महिमा को कोई सुने तो क्या होगा? वो लोभ मई श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। बिना ऐसे लोभ मई श्रद्धा नहीं होती। ये कोटि कोटि में भी दुर्लभ है। कोटि कोटि प्रकार के भक्त लोग हो सकते हैं, उनमें से कोई किसी एक बिरले को ऐसा लोभ उत्पन्न हो जाए जो हमको भी ऐसा भाव हो, किंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसी? अपने जीवन चरित्र में जो जो उनके निकट है सब में ये लोग पैदा कर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे छोटे उस समय थे, बालक, और वो क्या कहते हैं, पादाब्जोस्तव बिना प्रदर्शमेव नन्नत कदापि समये किल देवी जाचे सख्यायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सख्या। हम आपकी चरण सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम सखी आपकी बराबरी नहीं बनना चाहते, हमको तो अपने चरणों की सेवा में नियुक्त कर लीजिए, आपके चरणों की दासी हो पाते। यदि ऐसा नहीं ग्रहण करती दासी के रूप में तो हम अपने जीवन को प्रत्याग कर देंगे। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी जो सबसे छोटे थे, राजा के लड़के, राजा का लड़का कैसा होता है विषय में तो मत होना चाहिए, सबको छोड़ छाड़ करके सुंदरी स्त्री राज्य पाज्य सब छोड़ करके चले, उनकी यह दशा। रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी सब लोगों की ऐसे ही भावना,